जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवतम पुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं आज भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 29वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीनी भरी के मुख्य मध्य वार्तालाप। श्लोक नंबर है 80। मैत्रेय उवाच भागवता मुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिम् प्रदर्श्य हि अमुम् आमन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत्। मैत्रेय उवाच भागवतो मुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिम् प्रदर्शया हि अमुम् आमन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत्। मैत्रेय उवाच भागवता मुख्यो भगवान् नारद हंसयोर्गतिम् प्रदर्शया हि अमुम् आमन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत्। मैत्रेय उवाच भागवता मुख्यो भगवान् नारद हंसयोर्गतिम् प्रदर्श्य हि अमुम् आमन्त्र्य मैत्रेय उवाच भागवता मुख्यो भगवान् नारद हंसयोर्गतिम् भगवता मुख्यो भगवान् नारद हंसयोर्गतिम् प्रदर्श्राहि अमुम् आमन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमात्। माताजी मैत्रेय उवाच भागवता मुख्यो भगवान् नारद हंसयोर्गतिम् प्रदर्शयहि अमुम् आमन्त्र्य सद्यलोक ततो गमान्। वट टू वर्ड मीनिंग मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा भागवत भक्तों का मुख्य प्रमुख भगवान अत्यंत शक्तिमान नारद नारद मुनि हमसयो जीव तथा भगवान की गतिम स्वाभाविक स्थिति प्रदर्शय दिखलाकर ही निश्चय ही अमुम उस राजा को आमंत्र्य बुलाकर सिद्धलोकम सिद्धलोकों को सिद्धलोक का को तथा तत्पश्चात अगमत चला गया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिराम स्वामी श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्र ऋषि ने कहा महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीनी बरी के समक्ष भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। तात्पर्य सिद्धलोक तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर है। ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड के में सबसे ऊपर स्थित लोक समझा है और सिद्धलोक इसका उपग्रह है। सिद्धलोक के सभी निवासी योग शक्ति से संपन्न होते हैं। इस लोक से प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्धलोक के वासी हैं। यद्यपि वे सभी लोगों में विचरण करते रहते हैं, सिद्धलोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं और वे बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। सिद्धलोक के वासी मात्र अपनी योग सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। राजा प्राचीनी बरी को उपदेश देने के बाद नारद मुनि सिद्धलोक को चले गए और राजा को सिद्धलोक का आमंत्रण देते गए। उमज्ञान तिमरंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतार्पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामले नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिवशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि अपना कृपा मुझे दीजिए ताकि मैं इस श्लोक को जो अभी नारद मुनि और प्राचीनी बरी के बीच में चल रहा है उसको अच्छी तरह से भक्तों को प्रसन्न करने और भगवान का प्रसन्न करने के लिए खासकर महावीर प्रभु गोपाल चंद्र प्रभु सरलक्षण प्रभु और सभी भक्त गौलीला प्रभु तो हम अभी 80 श्लोक नंबर है, जहाँ पर नारद मुनि, हम देखते हैं कि पिछले कई अध्यायों से, ऑलमोस्ट चार चार अध्याय, 25 से लेके 29, अभी बस जस्ट लास्ट के वर्ष बाकी है। तो ये वर्ष में, ये टेक्स्ट में बताया गया है कि कैसे नारद मुनि जो प्राचीनी बरी को कृपा दिखाने के लिए आए थे, बहुत पहले दया दिखाया उनको, और सक्सेस होने के बाद वहाँ क्षण भर भी रुके नहीं। तो एक्चुअली आचार्य आचार्य क्या है, आचार्य वो है कि अपने जीवन से, आचार्य अपने जीवन से सिखलाते हैं कि कैसे हम जीवन में, कैसे हम भक्ति में, भक्ति में अपने, कैसे हम भक्ति में प्रगति करें, और साथ ही अपने शब्दों से भी भगवान का गुणगान गाते हैं, और कैसे बद्ध जीवों पर, कैसे बद्ध जीवों पर कृपा दिखाते हैं। तो उनका जीवन, पूरा जीवन ही ऐसे सीखने लायक है, ना कि सिर्फ जब वो सिर्फ मुख से प्रवचन देते हैं तो उनसे उस समय सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रवचन नहीं भी देते हैं तो भी उनका जीवन पूरा सीखने लायक है। यहाँ नारद मुनि हम देखते हैं कि ये तो एक, ये एक यानी एपिसोड है जहाँ पर नारद मुनि और प्राचीनी बरी शत को, नारद मुनि अपनी कृपा दिखा रहे हैं प्राचीनी बरी शत को। ऐसे एक भागवतम में बहुत सारे अलग अलग कहानियाँ भी हैं जहाँ नारद मुनि ने बहुत सारे शिष्यों को, मीन शिष्य बाद में, लेकिन बहुत सारे भक्तों को भी उन्होंने गाइड किया है। तो आज हम देखते हैं कि प्राचीनी परिषद जो नारद मुनि ने जब देखा उनको बहुत पहले, कि वो कैसे कर्म कांड में लगा हुआ है, और कर्म कांड में लगने के बाद, हालांकि वो लगा हुआ है लेकिन उसके बाद भी वो समझ रहा था कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और इसलिए उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो नारद मुनि जो अपना कृपा दिखाया उनके ऊपर, और अभी तो उन्हें, नारद मुनि उनको बहुत सारे कहते हैं कि वो एलेगोरिक स्टोरी था, लेकिन उनको पूरा भौतिक संसार, भौतिक संसार में कैसे जीव, कैसे लोग भटक रहे हैं, वो पूरा उन्होंने उनको उसके जरिए बताया। हालांकि ये स्टोरी हमारे लिए भी है महत्व, क्योंकि भागवतम का एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत मुख्य चीज है। तो इसलिए उनको पूरा ज्ञान देने के बाद नारद मुनि, आज हम देखते हैं कि यहाँ मेंशन किया, लिखा हुआ है कि नारद मुनि चले गए सिद्ध लोक, जब प्राचीनी बरिषद को ज्ञान देने के बाद। और उसका प्राचीनी बरिषद पर क्या हुआ असर, हम अभी देखेंगे अगले आगे के 2 वर्ष, 2 टेक्स्ट में, कि प्राचीनी बरिषद ज्ञान हासिल करने के बाद इमिडिएटली वो रुके भी नहीं कि प्रचेतास वापस आए और वो राजपाट संभाले। वो मंत्रियों को मैसेज छोड़ के गए प्रचेतास के लिए कि जब भी वो आए तो उनको बोलना कि मैं चले गया तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम में, और आप लोग आने के बाद राजपाट संभालना। और उन्होंने जाके कपिल आश्रम में बहुत सारे तपस्या किया, बहुत दिनों तक तपस्या किया, और अंत में उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये इमिजिएटली उनका, नारद मुनि का प्रचार का असर प्राचीनी परिषद पर हुआ। तो इससे क्या होता है, हम देखते हैं कि जो प्रीचर है तो वो नारद मुनि का जैसे सिखाते हैं कि कैसे प्रीचर होना चाहिए, वो बताते हैं कि दया सबसे बड़ा मुख्य चीज, उनको दया होना चाहिए कि ये जो जीव है ये बहुत जन्मों से इस संसार में भटक रहा है, और हर एक योनि से अलग योनि, कई जन्मों तक भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में भी कुछ समय तक यहाँ पर है जितने उनके जीवन है, तो उस जीवन में समय कम होने के बाद भी वो अपना भौतिक संसार के कार्य और सुख दुख में लगा हुआ है। तो ये जब देखते हैं शुद्ध भक्त तो उन पर बहुत, उनको जरा बहुत वो आती है, दया आती है जीव पर, इसलिए वो जाके प्रचार करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद भी जब उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दिया तो वो अमेरिका में जाके इस भावना से कि उनको, वो जब अमेरिका में गए थे तो देख रहे थे कि कैसे लोग यहाँ पर भौतिक संसार के सुख दुख में फंसे हुए हैं, तो उनको देखकर प्रभुपाद को बहुत दया होता था उनके ऊपर, तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते थे। और दूसरा है कि ये कैसे नारद मुनि ने प्राचीनी परिषद के हृदय में अंदर में डिटैचमेंट, त्याग त्याग डिटैचमेंट उनको करवाया इस भौतिक संसार से। और ये डिटैचमेंट रुखा नहीं है, ये अटैचमेंट टू कृष्णा, भगवान के बारे में, ताकि उन्होंने उनको सब समझाया था कि कैसे कर्मी लोग और कर्मकांड ज्ञानकांड ये सब जो है वो डिटैचमेंट सिखाते हैं लेकिन अटैचमेंट भगवान से नहीं सिखाते हैं। तो लेकिन ये भक्ति जो है, उन्होंने भक्ति भी सिखाया नारद मुनि ने उनको प्राचीन वर्ष को, कि कैसे हम भगवान के अटैचमेंट रह के ये सब डिटैचमेंट आ सकता है। तो ये भी है, ये सिखाते हैं अपने जीवन से। और मुख्य चीज़ है कि नारद मुनि कैसे प्रचारक अपने जीवन में होने रहना चाहिए वो भी सिखाते हैं। हम देखते हैं कि आचार्य जैसे बताते हैं कि अभी जैसे उनका सेवा हो गया, इमिजिएटली यहाँ पर नेक्स्ट वर्ष, इसलिए पहले इस वर्ष में ही बताते हैं कि नारद मुनि ने उनको पूरा ज्ञान दे दिया और इमिजिएटली वो चले गए अपने सिद्ध लोग दूसरे सेवाएं में लगने के लिए, क्योंकि उनको कर्ज मिला हुआ है कि ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, तो इसलिए वो चले गए अपने दूसरे सेवा में। तो वो जो है, जो ये नारद मुनि है, वो फैसिलिटीज और कंफर्ट से ज़्यादा अटैच में आसक्त नहीं थे जो प्राचीनी परिषद उनको दे रहे थे। उसी तरह हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी, सुखदेव गोस्वामी जैसे परीक्षित महाराज पहले राजा थे, राजपाट कर रहे थे, और उनको इतना ज़रूरत नहीं था सुखदेव गोस्वामी से सुनने का, इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी उन पर ज़्यादा पहले ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभी परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ भी अपने साथ नहीं लेके, हम देखते हैं कि चित्र में भी परीक्षित महाराज के पास कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ न लेके, और वो उनको ज़रूरत है अभी, वो बहुत आसक्त है कि उनको चाहिए भगवान के बारे में सुनने अंत समय में, तब जाके सुखदेव गोस्वामी ने उनको आके ज्ञान दिया। तो इससे पता चलता है कि ये हमको जो है आचार्य सिखाते हैं कि कैसे जीवन में रह के भी भौतिक संसार से आसक्त नहीं रहना है, हालांकि अपना कार्य करना है, जो भगवान का प्रचार है, भगवान ने भेजा है हमको प्रचार करना है, और भगवान की दया भगवान की कृपा सबको देना है, लेकिन उस संसार में रह के हमको आसक्त नहीं रहना है, और ये छोटी छोटी चीज़ों पर अटक के वहीं पर ही फिर नहीं अटक जाना है। तो ये सब सिखाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि ये जड़ भरत जो रहुगण को ज्ञान देते हैं, और रहुगण तो ज्ञान होने के बाद अब आपस में बाद में आके एकदम उनके चरणों पर आके गिर जाता है, और फिर जड़ भरत अपना काम कार्य में भगवान के बारे में बता के, और हम कौन है और भौतिक संसार में हम कैसे, ये सब बताने के बाद वो भी वहाँ से चले गए। तो आसक्त नहीं इन संसार के सुख दुखों से। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में प्रभुपाद भी, जब प्रभुपाद बोल रहे थे कि उनके डिसाइपल्स ने उनके लिए बहुत बड़े बड़े पैलेस बनाए हैं, बहुत सारे बहुत फैसिलिटीज, पहले तो प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, तब जब फैसिलिटीज आने के बाद भी प्रभुपाद ने पूरा डिटैचमेंट दिखाया कि कैसे प्रचार को, एक जगह वो रहते नहीं थे, हालांकि उनको हर जगह बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटीज अवेलेबल था प्रभुपाद को, लेकिन वो नहीं रखते थे। तो प्रभुपाद भी अपने आचार्य से सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, और इन फैसिलिटी से आसक्त नहीं रहना है। तो यही है। और आज का जो वर्ष है, यहाँ पर बताते हैं कि कैसे नारद मुनि अपने लोक सिद्ध लोक में चले गए और उन्होंने इनवाइट किया इनको प्राचीन परिषद को वहाँ पर आने के लिए। तो पूर्वा लिखते हैं कि तात्पर्य से पता चलता है कि नारद मुनि सिद्ध लोक में रहते हैं, लेकिन तो ये, और बाद में लिखते हैं पूर्वा कि वो हर जगह घूमते रहते हैं। और 11वां अध्याय टेक्स्ट नंबर चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट वर्स, वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, एक वर्ष है, बहुत अच्छा वर्ष है, उससे पता चलता है कि ये वर्ष है कि ये जो दया आती है आचार्य को, उनके पीछे जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, गौरनिताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जो दया आती है आचार्य को उनके पीछे किनका उनके ऊपर हाथ है। तो ये वर्ष में बताते हैं कि श्री शुक उवाच गोविंदम भुज गुप्तायम द्वारा वलायम कुरुद्वा अवात्सी नारदो अभिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की सेवा में नारद मुनि बहुत आसक्त थे कि उन भगवान की सेवा करना है, इसलिए नारद मुनि वहाँ द्वारका में कुछ समय तक रुके। ये जो द्वारका है वो नारद मुनि वहाँ पर कुछ समय तक रुके क्योंकि उनको भगवान की सेवा का उत्सुक था, बहुत वर्शिप करने का इच्छा था। तो जो कि द्वारका जो भगवान के भुजाओं से हमेशा प्रोटेक्ट है। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो शब्द यूज किया गया है इस वर्ष में अभिक्षणम, अभिक्षण मीन्स बार बार, कॉन्स्टेंटली, बार बार का मतलब कि नारद मुनि अपना सेवा करके वापस भगवान उनको बार बार द्वारका से उनको भेज रहे थे, जाओ और ये संसार में क्या चल रहा है और क्या क्या अलग अलग प्लैनेट्स पे ग्रहों में क्या क्या चल रहा है, अब जाके उनके जानकारी लेके वापस आओ। तो नारद मुनि इमीडिएटली वहाँ से जानकारी लेके आते थे और वापस आके द्वारका में रह जाते थे। क्यों आते थे द्वारका में? कृष्णोपासन लालसा, उनका बहुत ईगर था कि मैं भगवान के नज़दीक रहूं और उनकी वर्शिप करते रहूं। तो यहाँ लिखते हैं कि जीव गोस्वामी की भगवान को बार बार भेजते थे ताकि जाओ और अलग ग्रहों में कैसे कैसे लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं या कैसे लोग है, तो आप उनका समाचार लेके वापस आओ। तो इस तरह नारद मुनि हमेशा द्वारका में रहना चाहते थे, लेकिन बाद में ये शब्द यूज कर किया गया है कि नारद मुनि को दक्षा से श्राप मिला हुआ था कि वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, लेकिन बाद में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हाँ ये यूज करते हैं वर्ड यूज हियर, श्रीधर स्वामी टेल न तस्याम शाप देह प्रभाव, द्वारका में ये कर्स या दूसरा कोई भी एविल्स थिंग इसमें द्वारका में नहीं चलता है। बिकॉज क्यों? द्वारका इज ऑलवेज प्रोटेक्ट, द्वारका हमेशा भगवान के भुजाओं से प्रोटेक्ट किया हुआ है, गोविंद भुजा गुप्तायम। तो ये बहुत सारा अच्छा वर्ष है, इससे पता चल जाए कि जो शुद्ध भक्त हैं नारद मुनि ये सब हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हृदय से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का वर्शिप करना चाहते हैं, भगवान के पास रहना चाहते हैं, और शरीर से भगवान की सेवा करने के लिए जो जो कार्य करना पड़ता है वो करते हैं ताकि नहीं एक ही जगह नहीं बैठते हैं, हृदय में हमेशा भगवान रखते हैं, हमेशा हृदय में भगवान को रखते हैं और बाहर के कार्यों से, बाहर के शरीर से भगवान का कार्य करते रहते हैं। तो यही ये अलग क्वालिटी, एक और क्वालिटी है भगवान के शुद्ध भक्तों का कि हमेशा हम देखते हैं कि प्रभुपाद का ये उम्र होने के बाद भी कैसे हृदय में वृंदावन लेके गए अमेरिका में, तो हृदय में हमेशा भगवान रखते थे। लेकिन बाहर से बहुत कार्य करते थे, बहुत कि हम सोच भी नहीं सकते इतना। हालांकि वो एक कार्य होने के बाद दूसरे, दूसरे से होने का तीसरे, उनके जो असिस्टेंट थे वो थक जाते थे, लेकिन प्रभु बात करते रहते थे, करते रहते थे। उसी तरह भगवान ये कह रहे हैं कि नारद मुनि को, तुम हृदय में मेरे को रखो और वर्शिप करो, लेकिन जाके पूरे संसार में क्या क्या चल रहा है उनका, उनकी आप जाके करो सेवा। और फिर क्योंकि भगवान के भक्त हमेशा भगवान से अटैचमेंट रहते हैं, और देखते हैं कि हम तो भगवान जो है उनको बार बार भेजने के बाद फिर उन पर लालसा आ जाता है उनके ऊपर। इसलिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि, सॉरी, जीव गोस्वामी कहते हैं कि अभिक्षणम वर्ड यूज किया है वर्ष में, उसमें बहुत मुख्य देते हैं उस पर ऊपर। तो ये हम देखा कि कैसे जो है भक्त, भगवान के भक्त जो उन पर दया आती है वो कृष्णा से आती है, कृष्णा उनको बार बार भेजते हैं कि जाओ और जाके संसार में क्या चल रहा है, कैसे हम जीव भद्र जीवों पर उन पर दया करके उनको भक्ति में लगाओ। तो ये वर्ष का दिया गया है कि सिद्धलोक। अब ये सिद्धलोक यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद ने, बाद में लिखते हैं कि ऐसे कई लोकों में ब्रह्मा जी, सॉरी ब्रह्मा जी नारद मुनि बार बार घूमते रहते हैं। सिद्धलोकों के सभी यहाँ लिखा है कि यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं सिद्धलोक, तो यहाँ कहते हैं कि हालांकि वो सिद्धलोक में गए लेकिन वहां से लेके वो सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं, क्योंकि उनको भगवान का, उनको आज्ञा मिला है। इसलिए भगवान ने उनको पर्सनली वीणा दिया था कि तुम जाओ ये लेके और हर जगह आप मेरा गुणगान गाओ, ताकि सब लोग बद्ध जीव उस पर आसक्त हुए। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है भक्तों, लोगों, जीवों पर दया दिखाने के लिए अपने शुद्ध भक्त, और कभी बहुत तरह से भगवान इस संसार में आते हैं। मुख्य चेतना लीला में कहा गया है कि मुख्य चीज भगवान तीन तरह से आते हैं। हालांकि भगवान तो बहुत तरह से आते हैं, भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं, भगवान होली नेम के रूप में आते हैं, भगवान भक्तों के रूप में आते हैं, तो अलग अलग तरह से भगवान आते हैं। लेकिन चैतन्य लीला में कहा गया कि भगवान इस संसार में बद्ध जीवों को कृपा दिखाने के लिए तीन तरह से आते हैं। पहला है कि साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन मीन्स जब भगवान स्वयं इस संसार में आते हैं तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद दर्शन देने के बाद हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ये संसार में थे, ये दुनिया में थे, तो जब साउथ इंडिया टूर जा रहे थे, तो साउथ इंडिया में जब जाने के बाद वो हर किससे रास्ते में कोई भी होली नेम चेंट करता था, उनसे गले लगे आके उनको भक्त बना लेते थे। उसी तरह जब भगवान यहाँ पर साक्षात्कार अवेलेबल है, यहाँ पर रहते हैं इस संसार में, तो वो सबको कृपा दिलाने के लिए ही यहाँ रहते हैं। हम देखते हैं कि जब एक एक चेतन चरितामृत में स्टोरी आता है कि जैसे श्रीवास ठाकुर जो उनके एक टेलर थे, मुस्लिम टेलर थे, तो जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का नृत्य डांस करते हुए, तो उनको वो भी प्रशंसा कर रहे थे, तो इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दिया। ऐसे कृपा भगवान हमेशा देखते रहते हैं जब वो साक्षात्कार यहाँ पर आते हैं। और दूसरा कृपा ये भी है उनका कि कोई भक्तों का क्रिटिसाइज करता है या भक्तों को निंदा करता है, भगवान भक्तों का अपराध करता है, अपराध सबसे बड़ा वर्ड, भक्तों का अपराध करता है, तो भगवान तभी भी उनको कृपा देते हैं, लेकिन अलग तरह से कृपा देते हैं। मैं पढ़ रहा था अभी चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में कि जब गोपाल चप्पल ने श्रीवास ठाकुर का ये अपमान किया था, उनके घर के ये रख के सब पूजा, देवी पूजा का, तो वो उनको कुछ समय के बाद ये कोढ़ हो गया। कोढ़ होने के बाद वो फिर वो उनको गांव से निकाल दिया और वो गंगा के किनारे में रहते थे। तब जब उनको चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने एक बार देखा कि चैतन्य महाप्रभु गंगा पे स्नान करने के लिए आ रहे। तो इमीडिएटली वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनसे क्षमा माफी मांगने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु उन पर बहुत गुस्सा दिखाया कि तुमने मेरे भक्त का, श्रीवास ठाकुर का अपमान किया, ये किया है, अपराध किया है। तुम इस तरह से 10 लाख 10 मिलियंस आप ऐसे जीवन में कष्ट सहते रहेंगे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु सबसे महावदन्य है, चैतन्य महाप्रभु से बड़ा कोई इस जीवन में मर्सी दिखाने वाले कोई भगवान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबसे महावदन्य है। लेकिन हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर हमको वार्निंग भी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि कैसे संसार में हम भक्ति करें और भक्तों का अपराध न करें। इसलिए हम देखते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज बहुत बार अपने लेक्चर में कोट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु रेज बाय रेजिंग द हैंड, हाथ ऊपर करके सब बोलते हैं कि हमेशा जप करो, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भक्तों का कभी अपराध न करो। तो आई पर्सनली कम, मैं खुद आऊंगा और अब भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो इसलिए ये सिखाने के लिए कि भक्तों का अपराध कितना डेंजर है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने जरिए हम दिखाते हैं कि कैसे सहन करना चाहिए। तो ये, और हम देखते हैं कि ऐसे साक्षात दर्शन भगवान, जब कृष्ण भी यहाँ पर आए थे, द्वारका में आए थे, द्वारका और मथुरा जब जा रहे थे, तो उन्होंने एक जो कुब्जा को मर कृपा दिखाया, और उसके बाद जो टेलर जो कपड़े नहीं दे रहे थे उनको भी अलग तरह से कृपा दिखाया। तो यह है साक्षात दर्शन भगवान के। दूसरा है, दूसरा तरह से जो भगवान कृपा करते हैं, अभिभाव। अभिभाव मतलब भगवान इस संसार में बाहर की दृष्टि से अवेलेबल नहीं है, बाहर की दृष्टि से दिखते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कि भगवान हमेशा चार जगह हमेशा रहते हैं। चार जगह कौन से हैं? एक जगह है कि जब भी सची माता हमेशा कुकिंग करती है, जब भी सची माता कुकिंग करती है भगवान के, भगवान वहां पर आ जाते हैं, इमीडिएटली मौजूद रहते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत वाले बताया गया है कि जब भी सची माता भगवान के लिए कुकिंग करती है तो भगवान वहां पर आके पूरा प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं कि वो प्लेट में रहता है और इमीडिएटली प्लेट खत्म हो जाता है, तो भक्त समझ लेते हैं कि ये भगवान यहाँ पर आए हैं। तो दूसरा है कि जब भी नित्यानंद प्रभु कीर्तन संकीर्तन करते हैं, तो जहां पर भी नित्यानंद प्रभु संकीर्तन करते हैं वहां चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हम देखा कि पानी हट दही चूड़ा फेस्टिवल में कैसे नित्यानंद प्रभु और सभी भक्तों कीर्तन कर रहे थे, भगवान स्वयं आए वहां पर, और वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी को भी कृपा दिया। तो ये दूसरा है। और तीसरा है श्रीवास ठाकुर के घर पे, जब श्रीवास ठाकुर के घर पे कीर्तन होता है। तो ये तीन है और ये चौथा और है। तो भगवान यहाँ पर ये कहते हैं अभिभाव। अभिभाव में ऊपर की आंखों की दृष्टि से भगवान दिखते नहीं है लेकिन वहां पर मौजूद रहते हैं, महसूस कर सकते हैं। चौथा है जब भी राघव पंडित और उनकी सिस्टर के यहाँ पे जो गंगा के किनारे है मौजूद, वहां पर भगवान हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो ये चार चीजों में, ये चार में भगवान हमेशा आते हैं, ये कहते हैं अविभाव। थर्ड वन है जो है आवेश, वो हम सुना है बहुत बार, उसके ऊपर ही पूरा चर्चा चलता है कि सक्तावेश। तो भगवान जो जीव है, जीव को एम्पावर्ड करते हैं अपने शक्ति से, तो उस रूप में भगवान इधर आते हैं जीवों पर कृपा दिखाने के लिए। हम देखते हैं कि लॉर्ड एम्पावर्ड लिविंग एंटिटीज बाय हिज पावर टू डू ग्रेटेस्ट थिंग्स। एक ध्रुव महाराज के पास टाइम में एक वर्स आता है 4.8.80, तो वहां पर लिखते हैं कि प्रभुपाद जब स्मॉल, जो छोटा यूनिट रहता है, जब छोटा यूनिट अपने आप ध्यान करते करते बड़े यूनिट में टोटल एनर्जी में जब वो मर्ज हो जाता है, मर्ज मीन्स भगवान पर पूरा एब्जॉर्ब रहता है, तो उसमें ये शक्ति आ जाता है कि वो पूरा टोटल यूनिट का कार्य कर सकता है, टोटल एनर्जी का। उसको उदाहरण के ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जब ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, एब्जॉर्ब थे पूरा ध्यान भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उनको कुछ पता नहीं था कि उनके ध्यान से, उनके तपस्या से कैसे जमीन नीचे जा रही है। एक अंगूठे के प्रेशर से वो पूरा जमीन नीचे जा रहा था। तो ध्रुव महाराज को ऐसा कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो एक जो छोटा यूनिट है उनका, वो ध्यान कर रहे थे पूरे कंप्लीट यूनिट पर, तो उसमें पूरा कंप्लीट यूनिट का शक्ति आ गया। और दूसरा उदाहरण दे रहे थे कि जब ये जो संसार को चलाते हैं 33 करोड़ देवी देवता जो संसार को चलाते हैं, और उसमें से एक वायु देवता है, जो वायु देवता वायु को कंट्रोल करता है, जब ध्रुव महाराज ने अपना सांस लेना छोड़ दिया, पहले मंथ में कपिता फ्रूट ले रहे थे 3 दिन में, दूसरे मंथ में जल 6 दिन में, लीफ, तीसरे मंथ में जल 9 दिन में, चौथे मंथ में 12 एंड पांचवें मंथ में वो भी छोड़ दिया। जब पांचवें मंथ में ध्रुव महाराज ने सांस लेना छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो पूरे ब्रह्मांड का सांस हवा लेना, हवा बंद हो गया। तो ये सब वायु जो देवता है, वायु का देवता है, वो भी सफोकेशन फील कर रहे थे, तो उनको भी वायु का, वो भी वायु नहीं अवेलेबल था क्योंकि ध्रुव महाराज ने सांस लेना बंद कर दिया। तब ध्रुव महाराज ने सब सांस लेना बंद किया, इसका मतलब कि भगवान ने उनके अंदर थे, भगवान उनके अंदर, इसलिए उनको इतना पावर आया। और फिर सभी देवी देवता ये भगवान के पास जाते हैं कि ये हम मर जाएंगे अगर ये हवा नहीं मिला तो। फिर भगवान को बोलते हैं कि ध्रुव महाराज की तपस्या से सब हो रहा है। तो हम देखते हैं कि सक्तावेश अवतार ऐसे रहते हैं, वो आते हैं, भगवान उनको पूरा एम्पावर्ड करते हैं अपने शक्ति से। तो ये तात्पर्य से प्रभुपाद बताते हैं कि सक्तावेश का मतलब कैसा रहता है, कि वो छोटे यूनिट भगवान का एब्जॉर्ब करते करते पूरा अपने आप को टोटल में कर लेते हैं और फिर उन्हीं की तरह कार्य करते हैं। फिर दूसरा है, जैसे उदाहरण है कि जीसस क्राइस्ट का भी एक उदाहरण है, जीसस क्राइस्ट भी सक्तावेश अवतार, हमारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद ये सब कहते हैं। तो जीसस क्राइस्ट एक बार क्या हुआ, एक शादी था, एक जो गर्ल की साइड, लड़की की साइड और लड़के के साइड, लड़की के साइड वाले पुअर थे, बहुत गरीब थे। तो वो उनका क्या रहता है, उनका रिलीजन रहता है कि रिवाज रहता है कि जब भी लड़के वाले आते हैं गांव में शादी के लिए, तो ये उनको एक रेड कलर का लिक्विड रहता है, तो उनको लीकर कहते हैं, वो लीकर सबको पिलाते हैं। अब ये लड़की के साइड वाले बहुत गरीब थे, तो उनके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं था, तो सोच रहे थे कि क्या करूं अभी। फिर उन्होंने जीसस क्राइस्ट, एक्चुअली जीसस क्राइस्ट लोगों को बिलीव करने के लिए कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको साधारण मनुष्य न समझे, वो कुछ ऐसे कार्य करते थे, चमत्कारी कार्य, ताकि लोग उनको साधारण मनुष्य न ले, क्योंकि उनका उनका बुद्धि यहाँ तक था कि हेवन तक, आगे उनको पता नहीं था कि हेवन के आगे क्या है। तो वो उनको कोई चमत्कार करके दिखाता है तो उनको महान व्यक्ति समझते थे, तो इसलिए जीसस क्राइस्ट उनको करके दिखाते थे कि चमत्कार। तो वो जब लड़की वाले, फिर गरीब जो उनके पिताजी जीसस क्राइस्ट के पास आए, उन्हें कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और मेरी बेटी का शादी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो वहाँ पर बाहर मटका रखा हुआ है, तुम जाके वो मटका देखो, उसमें सब है अवेलेबल। तो उन्होंने देखा कि मटका फुल पूरा लीकर से भरा हुआ था। तो इस तरह के चमत्कार जीसस क्राइस्ट दिखाते थे। कभी कभी वो पानी के ऊपर चलते थे जीसस क्राइस्ट, कभी जो जिनको पैर नहीं है उनको वो चलते थे वो, और कभी कभी जो मरा हुआ शरीर है उसको भी उठा देते थे, ताकि लोग उन पर साधारण मनुष्य समझे। जब उनको कहा कि ये सब कहाँ से आता है, जब जीसस क्राइस्ट ने पूछा, उन्होंने कहा कि ये सब मेरे को जो भगवान जो हेवन में है उनसे सब पूरा मेरे को कृपा आता है। तो एक जीसस क्राइस्ट भी है, और एक बहुत अच्छा चेतना लीला में एक अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत बार राधा स्वयं महाराज ने कोट भी किया है उनके लीलाओं में, कि कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी थे, नकुल ब्रह्मचारी। वो बहुत सिंपल, नकुल ब्रह्मचारी बहुत सिंपल थे और भगवान की भक्ति चैतन्य महाप्रभु का पूरा अच्छा भक्ति करते थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनको एम्पावर्ड किया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में चले गए। तो स्वयं चलने के बाद, जैसे वो बोलते हैं कि घोस्ट घोस्ट किसके शरीर में चल जाता है, तो वो खुद ने घोस्ट उनसे कार्य करवाता है, उनको नहीं करना पड़ता है बाहरी शरीर से, लेकिन वो करता है। तो उनको क्रिश्चन इसमें इसमें कहते हैं कि होली घोस्ट, जिस क्रिश्चियन रिलीजन में इस होली घोस्ट, होली घोस्ट में अच्छा घोस्ट, वो तकलीफ नहीं देता है लेकिन अच्छा कार्य करवाता है। तो लोग समझ गए कि कुछ तो भी इनके उसमें घोस्ट आया है। फिर उन्होंने देखा कि ये तो जैसे कि चेतन महाप्रभु फील करते थे, ये वैसे ही कर रहा है। चेतन महाप्रभु जब एक्सटेसी में आ जाते थे तो आठ आठ दस दस घंटे हंसते रहते थे, और ये भी उनकी तरह हंसते रहते थे, और बाद में फिर कभी कभी वो रोते रहते थे आठ आठ दस दस घंटे, और ये भी रोते थे। तो इस तरह लोग समझ गए कि इनमें चेतन महाप्रभु आ गए हैं और इनके शरीर में चेतन महाप्रभु आए हैं। फिर लेकिन एक दूसरे डिवोटी थे शिवानंद सेन, तो शिवानंद सेन थोड़ा बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये भगवान उनके शरीर में आ सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर जब मुझे चेतन महाप्रभु बताएंगे कि मैं कौन सा मंत्र, मेरे गुरु ने मुझे कौन सा मंत्र दिया है और मैं कौन सा मंत्र जप करता हूँ, तो मैं समझूंगा कि चेतन महाप्रभु उनके शरीर में आए हैं। तो एक पूरा पब्लिक प्लेस था, बहुत सारे क्राउड था वहाँ पर, और फिर वहाँ पर शिवानंद सेन भी थे और नकुल ब्रह्मचारी ने अपने दो शिष्यों को, तो शिष्य में दो उनके डिवोटीज को भेजा कि जाओ ढूंढो शिवानंद सेन कहाँ हैं, और वो पूरे मार्केट में ढूंढ रहे थे, पूरा मार्केट ढूंढ रहे थे, शिवानंद सेन कहाँ है, नकुल ब्रह्मचारी बुला रहे हैं, ऐसे बार बार जोर जोर से वो चिल्ला रहे थे, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं, नकुल ब्रह्मचारी बुला रहे हैं। फिर नकुल ब्रह्मचारी वहाँ पर आ गए, शिवानंद सेन उनके पास आए, नकुल ब्रह्मचारी के पास। फिर नकुल ब्रह्मचारी ने उनको कहा कि तुम जो जब मंत्र करते हैं वो है गोपाल मंत्र चार शब्दों का, आपके गुरु ने जो दिया है। तो फिर एग्जैक्टली शिवानंद सेन समझ गए कि ये चेतन महाप्रभु ही है, क्योंकि मैं ये मंत्र जप करता हूँ, ये साधारण मनुष्य नहीं है। फिर उनको बोलते हैं कि नकुल ब्रह्मचारी, सो आप समझ गए अभी मैं कौन हूँ, तो ये अभी जो ये आपके उसमें डाउट है वो डाउट करना छोड़ दो। तो ये एक तरह का भगवान का दूसरा पास टाइम है, ताकि वो सत्यावेश अवतार, और हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रभुपाद भी सत्यावेश अवतार कहा गया, प्रभुपाद ने भी बहुत सारे कार्य किए। जब प्रभुपाद जा रहे थे जब अमेरिका, तो वो सॉन्ग लिखा है उन्होंने, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ, आई एम लाइक अ पपेट। तो एक तरह का वो प्रभुपाद बता ही रहे थे कि जब सत्यावेशा का मतलब क्या होता है, पपेट। हालांकि वो जो पपेट हम देखते हैं कि वो ऊपर से डांस करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं, उनसे करवाया जाता है। तो उसी तरह प्रभुपाद कहने का मतलब ये था कि ऑल्दो आई एम डूइंग सो मैनी एक्टिविटीज, सो मैनी प्रीचिंग ऑल दिस थिंग, बट आई एम लाइक अ पपेट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड, आई एम नॉट डूइंग, लॉर्ड इज वॉन्टिंग टू डू मी डे। तो इसी तरह ये भगवान इस संसार में आके कार्य करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा दिखाते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो भी था नारद मुनि का, हम जो डिस्कस किया नारद मुनि का दया कृपा, ये सब भगवान से ही आते हैं। हमको पता है कि जैसे नारद मुनि द्वारका में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान स्वयं अवेलेबल है और उनका उनकी वर्शिप करना चाहते हैं, लेकिन भगवान उनको बार बार भेजते थे। उसी तरह हम देखते हैं कि प्रभुपाद भी बोलते थे बहुत बार कि मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे भगवान ने कहा जाओ वहाँ पर, बहुत सारे बद्ध जीव संसार में भटक रहे हैं, उन पर आप जाके कृपा करके ग्रंथ भागवतम ये सब लिख के फिर आ पाओ। तो ये सब भगवान की कृपा से, भगवान की दया से वो अपने आचार्य भेजते हैं, और उनकी कृपा लेके आचार्य संसार में बद्धजीवों पर कृपा देते हैं, इसलिए कहते हैं कि उनको साधारण मनुष्य की तरह हमको नहीं रहना, नहीं समझना चाहिए उसको। उसको बतलाने के लिए भगवान इस वर्ष के बाद जो हमने देखा कि द्वारका में नारद रहते हैं, सुखदेव गोस्वामी उनको पूरा स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक बार सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे द्वारका से बाहर, तो वहाँ पर जाके भगवान के घर में से ही ये जो उनको दिखाने के लिए पूछने थे कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, उनको क्या बच्चा होगा कि क्या होगा, तो ये जब ये दिखाने के लिए उन्होंने पास्ट टाइम बताया कि साध मनुष्य इनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए और उनसे मजाक या कुछ ऐसा नहीं कार्य करना चाहिए, तो उसके ऊपर पूरा भगवान ने पास्ट टाइम सुखदेव गोस्वामी उनको पास्ट टाइम बताया। तो दोनों तरह से हमको कृपा ही दे रहे हैं, भगवान का कृपा स्वयं प्रसन्न होके और भगवान का कृपा थोड़ा प्रसन्न नहीं भी हुए लेकिन हमको चेतावनी देते हैं कि ये संसार में कैसे रहना है। तो मैं समय हो गया है यहाँ पर बस विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रभुपाद भी बोलते थे बहुत बार कि मैं तो नहीं आना चाहता था लेकिन मुझे भगवान ने कहा जाओ वहां पर बहुत सारे बद्ध जीव संसार में भटक रहे हैं, उन पर आप जाके कृपा करके ग्रंथ भागवतम ये सब लिख के फिर आ पाओ। तो ये सब भगवान की कृपा से, भगवान की दया से वो अपने आचार्य भेजते हैं और उनकी कृपा लेके आचार्य संसार में बद्ध जीवों पर कृपा देते हैं, इसलिए कहते हैं कि उनको साधारण मनुष्य की तरह हमको नहीं रहना, नहीं समझना चाहिए उसको। उसको बतलाने के लिए भगवान इस वर्ष के बाद जो हमने देखा कि द्वारका में नारद रहते हैं, सुखदेव गोस्वामी उनको पूरा स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक बार सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे द्वारका से बाहर, तो वहाँ पर जाके भगवान के घर में से ही ये जो उनको दिखाने के लिए पूछने थे कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, उनको क्या बच्चा होगा कि क्या होगा, तो ये जब ये दिखाने के लिए उन्होंने पास्ट टाइम बताया कि साध मनुष्य इनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए और उनसे मजाक या कुछ ऐसा नहीं कार्य करना चाहिए, तो उसके ऊपर पूरा भगवान ने पास्ट टाइम सुखदेव को समय उनको पास्ट टाइम बताया। तो दोनों तरह से हमको कृपा ही दे रहे हैं, भगवान का कृपा स्वयं प्रसन्न होके और भगवान का कृपा थोड़ा प्रसन्न नहीं भी हुए लेकिन हमको चेतावनी देते हैं कि ये संसार में कैसे रहना है। तो मैं समय हो गया है यहाँ पर बस विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।